نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي روح القرآن پارا نمبر 18 قد أفلح المؤمنون یہ پارا بھی اپنی جگہ ایک خزانہ ہے. پہلی تو اس کی صورت ہے المؤمنون جو کہ 118 آیات ہیں. ہم نے سورت بقرہ کے آغاز میں ہدایت کے اعتبار سے لوگوں کے تین گروہ دیکھے تھے, جس میں ایک ایمان والے مومن, پھر منافقین اور اسی طرح سے کفار. قرآن پاک کی خوبصورت ترتیب دیکھیے کہ انہی تینوں ناموں سے قرآن پاک میں مختلف صورتیں موجود ہیں, جن میں سے آج پہلی صورت المومنون ہم پڑھ رہے ہیں. صورت منافقون 28 پارے میں آئے گی اور صورت الکافرون 30 پارے میں. ہمارے لیے اس میں بہت ہی خوبصورت گول ہے کہ جب کبھی بھی کسی جگہ اسلامی معاشرہ بنے گا تو لوگ کیسے ہوں گے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعمیر سیرت کے لیے بنیادی صفات جو درکار ہیں ان کا تذکرہ آیت 1 سے 11 میں ہے. قد افلح المؤمنون سے لے کر الذین یرثون الفردوس ہم فیھا خالدون, بے شک فلاح پائی ایمان والوں نے. ایمان والے کون ہوتے؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور وہ لغو سے منہ پھیرتے ہیں, اور وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں, اور وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, سوائے اس کے کہ اپنی بیویوں اور اپنی ملکیت والوں کے لیے. بس ایسے لوگ ملامت کیے ہوئے میں سے نہیں ہیں. کوئی اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈ لے تو یہی زیادتی کرنے والے ہیں یا حدوں سے بڑھنے والے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور وہی لوگ ہیں جو کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو وارث ہوں گے, اور وہ جنت ورثے میں فردوس پائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رکھے جائیں گے. آپ اگر دیکھیں تو کتنے خوبصورت طریقے سے ایمان سے بات شروع ہوئی, پھر نمازوں کے خشوع پہ بات آئی, پھر لغویات سے اعراض کی بات ہوئی, پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات ہوئی, اور پھر اسی طرح فحش اور گندگی سے پاک رہتے ہوئے ایسے لوگ امانتوں اور عہدوں کی رعایت کرنے والے بن گئے, اور بات اینڈ پہ پھر نماز پہ پوری ہوئی. یہ ہے جی فلاح کا ایک ایجنڈا. دنیا میں بہت سارے لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں. قرآن نے مومن کی فلاح کا جو ایجنڈا دیا ہے, اس میں سب سے ٹاپ موسٹ نمازوں کا خشوع ہے. اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنا. خشوع کیا ہے؟ کیا یہ کوئی آرٹیفیشل کیفیت ہے, کوئی وجد میں آ جانا ہے, کوئی خاص ایکشنز کا نام ہے؟ نہیں. خشوع کیا ہے کہ ایک انسان جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرے, اور اس کیفیت سے اس کے اندر ایک لرزہ طاری ہو, اس کی آنکھ بہہ نکلے, اس کی نظر جھک جائے, اور ایک مجرم کی طرح جس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے, مومن اپنے گناہوں کا اقرار کرتا جائے اور جو زبان سے ادا کرے اس کے دل کی پکار بنے. کیا میں اور آپ اس کرائیٹیرین پہ پورے اترتے ہیں؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں. اور جب نماز ایمان کے بدلے میں آتی ہے, اور اگر آپ دیکھیں تو بات تو شروع ایمان سے, قد افلح المؤمنون. لوگ کہتے ہیں کہ نماز سے بات شروع ہوتی ہے, اللہ نے ایمان سے شروع کی. سب سے پہلے دل میں سچا ایمان آتا ہے جب آپ اللہ کو مان جاتے ہیں. ایمان کیا ہے؟ مان, پہچان. آپ اللہ کو اس کی ہستی کے ساتھ پا جاتے ہیں. وہ بہت بڑا, اللہ اکبر. کبھی آپ ایاک نعبدو ایاک نستعین پہ غور کرتے ہیں. کائنات کا نظام آپ کو چاروں طرف بول بول کے کہہ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی ہستی اس کے پیچھے. عموماً آپ اپنی ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کو سیٹ کرنے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے. کبھی ٹھیک ہو جاتی, کبھی نہیں, کبھی ٹائم لیتی, کبھی نہیں لیتی. چھوٹا سا سیٹ اپ, اور کہاں پورے زمین و آسمان. تو جب یہ کیفیت دل میں آتی ہے تو ایمان آتا ہے. بندے کے پاس اللہ کی وہ ہستی ایک بہت بڑے وجود کی صورت میں آتی نا, تو پھر نمازوں میں دل جھکتا ہے. فطری طور ہے, لکھ لے. ایمان کا لازمی نتیجہ خشوع فی الصلاۃ ہے. اور آپ کہتے ہیں یہ کیسے؟ آپ دنیا میں کسی بڑے کے سامنے پیش کیے جائیں, کیا حالت ہوتی ہے؟ कभी जिंदगी में आपने किसी ऐसी जगह को विजिट किया हो जो आपके हिसाब से किसी बहुत बड़े बंदे की है, किसी ऑफिस में, किसी इमिग्रेशन में, हत्ता के पुलिस मैन, फौज का कोई बंदा रोक ले, सदर, वजीर, मशीर, बस जो वो कैफियत हो रही होती है ना, क्योंकि हम उनको बड़ा समझ रहे होते हैं, तो बस अल्लाह को बड़ा समझेंगे तो फिर, और जब आप नमाज में अल्लाह के सामने खड़े होंगे, फितरी सी बात है कि आप लफ्ज़ से मुंह फेर लेंगे। जब आपके सामने इतनी खूबसूरत चीज़ आ गई तो आप बेकार चीज़ को क्यों देखेंगे, फिर आपको अपने वक्त की कदर होगी। और इसी तरह से जब आप लगवियात से मुंह फेरते हैं तो आपका तज़किया होने लगता है, माल का भी और आपके वजूद का भी। या ये नहीं कहा गया वो ज़कात अदा करते हैं, तज़किए का काम करते हैं, यानी हालांकि मक्की सूरतों में ज़कात नहीं थी, मुराद ये कि वो ज़कात अदा करते हैं, उनको अपने माल की फिक्र लग जाती है और फिर वो शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले बनकर मुआशरे की तत्हीर का ज़रिया बनते हैं, उस माशरे के नसब को बचा लेते हैं और फिर अपनी अहदों और अमानतों की निगरानी करते हैं। मोमिन की ज़िंदगी एक पाबंद ज़िंदगी होती है, लोग उसके बारे में पहले से सोच लेते हैं कि ये हमें धोखा नहीं देगा, ये सच्चा है, ये वादे का पक्का है। और फिर नमाजों की हिफाजत, नमाज की हिफाजत क्या है कि वक्त पे पढ़ते हैं, सुन्नत तरीके से पढ़ते हैं, नमाजों को टालते नहीं हैं, और नमाज का जो असर जिस्म पे होना चाहिए उसको जायल नहीं होने देते। और फिर उसके बाद देखिए, मिन खशयति रब्बिहिम मुशफिकून, अपने रब से खौफ खा रहे होते हैं, किस बात का, कि वो हमसे नाराज़ ना हो जाए। मोमिन का डर अल्लाह के साथ जो होता है ना, वो कैसा होता है, खशियत का होता है। और ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, सूरत में आगे भी पढ़ेंगे। फिर आगे देखिए, बी आयाति रब्बिहिम यूमिनून, अपने रब की आयतों पर ईमान लाते हैं। ये आपके सामने इस पूरी सूरत का एक खुलासा बन रहा है कि एक मोमिन कैसा होता है। फिर आप देखिए, बी रब्बिहिम ला युशरिकून, अपने रब के साथ शिरक नहीं करते, मोमिन की ज़िंदगी में शिरक हो नहीं सकता। फिर आप देखिए, आगे हम पढ़ेंगे, मा अतौ व कुलूबुहुम वजीला, वो जो कुछ करते हैं दिल ही दिल में डरते हैं, मुराद ये है कि कहीं ये हमारा रिजेक्ट ना हो जाए। ये गुनाह करके डरने वाले नहीं हैं, नेकियां करके भी डरते हैं ये लोग। फिर यु सारे उन फिल खैरात, भलाइयों और नेकियों में जल्दी करते हैं, वहुम लहा साबिकून, नेकियों में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ये 12 नुकात आज से आप अपने लिए हदफ बना लें, वन बाय वन चेक करते जाइए और क्लिक करते जाएं कि डन डन अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आपका किरदार हो, आपके बच्चे का किरदार हो, हमारे घर के मर्दों का किरदार हो, इस्लाम की जो असल ताकत है वो किरदार है। अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि खुदा करे तुझे अता जिद्दते किरदार, कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान। इन शुरू की आयात में तो अल्लाह के नबी के बारे में आपकी जौजा ने फरमाया था कि आपने क्या कुरान को नहीं देखा, काना खुलुका खुल कुरान, आप तो चलते फिरते कुरान थे। फिर आप देखिए कि यहाँ जो नमाज के खुशू की खास से बात हुई, तो खुशू के बगैर नमाज ऐसे है जैसे रूह के बगैर जिस्म, मुर्दा, लाश, डेड बॉडी, मैयत। क्या हम मैयत को संभालते हैं? नहीं। आज अगर हमारी नमाजें खुशू से खाली है ना, तो वो बिल्कुल एक मुर्दा है। तो खुशू क्या है? दिल आजजी और इनके सारी के एहसास के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होने को महसूस करें। और नमाज दिल और अज़ा में खुशू के साथ अल्लाह के सामने खड़े होने का दूसरा नाम है। फिर आप देखिए कि जो खुशू और खुदू से नमाज पढ़ेगा, उससे अल्लाह के बहुत प्यारे वादे हैं। मसलन नमाज का अजर खुशू के हिसाब से मिलता है, थोड़े खुशू में थोड़ा अजर, ज़्यादा खुशू में ज़्यादा अजर। और खुशू एक इतना खूबसूरत अमल है, ये जन्नत को वाजिब करने वाला है। अब जब आप इसका इतना तذकरा सुनते हैं तो आपके दिल में एक सवाल आता है, कैसे, हाउ कैन आई गेट द खुशू, मेरी नमाज कैसे खूबसूरत हो, मेरी नमाज मुर्दा ना हो जिंदा हो। तो आइए ज़रा इसको भी देख लें, खुशू कैसे पैदा किया जाए। नंबर एक, अपने आप को ये शऊर दिलाना कि ये लम्हात सबसे कीमती है। नमाज बंदे और रब का मुकाम मुलाकात भी है। आप किसी बड़े अफसर के पास जाएं, किसी ऑफिस में जा रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं, सेलफोन खोल के जाते हैं, आप बार बार चेक करते हैं बेल तो नहीं खुली रहेगी, और खुदा ना खासा खुली रह जाए और बीच में एक कॉल आ जाए, सर से पाँव तक शर्मिंदा। तो फिर मस्जिद में आप नमाज पढ़ने से पहले क्या ये नहीं चेक करते क्लास में बैठने से पहले ये चेक नहीं करते। यानी जितना रोब किसी दुनिया की बड़ी से बड़ी जगह पे बैठकर हमारे दिल में तारी हो, वो अल्लाह के लिए हमारे दिल में आने लगे। फिर इसी तरह अपने नफ्स को बार बार सुकून की तरफ लेकर आना। ये क्यों कहते हैं कि वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, मदद मांगो, तकलीफ है, बीमारी है, परेशानी है, आप कहते हैं उसको सुनाऊं, उसको बताऊं, किसको बताऊं? मियाँ नहीं सुनता, माँ नहीं सुनती, बाप नहीं सुनता, बहन नहीं सुनती, सहेलियां भी नहीं सुनती। भाई आप गलत दरवाजे खटखटा रहे हैं। वो हस्ती जो सुन के आपको तसल्ली भी दे सकती है, वो रब है। तो आज से एक नियत कीजिए, जिस वक्त आपको घबराहट हो, बीमारी का एहसास हो, परेशानी हो, तन्हाई का एहसास हो, कोई मसला है, बच्चा घर नहीं आया, शौहर साहब फोन नहीं उठा रहे, वसवसे आ रहे हैं, आप हौल रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, फौरन वजू करके मसल्ले पे खड़ो। मुझे पता है कि घबराहट में पड़ा कुछ नहीं जाएगा, इट्स ओके। अल्लाह के सामने एक मस्कीन बंदी बनकर अपने इसका एहसास कीजिए। आप देखिए कि वो जो दो नफिल आप पढ़ेंगे ना, उससे खूबसूरत नफिल शायद पूरे दिन में ना आपने पढ़े हों। फिर इसी तरह बार बार अल्लाह सुबहाना तला की कुदरत के बारे में सोचिए। सूरज, चांद, सितारे, ये कैसे चल रहा है? इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़। और इस तरह से अब तदब्बुर करें, अपने घरों के बच्चों को देख के तदब्बुर किया करें, ये कितनी कमज़ोर हालत में दुनिया में आए हैं। अब देखो ये बड़ा हो रहा है, अब देखो इसके हाथ देखो। कभी अपने बच्चों के छोटे छोटे हाथ देखा करें, कभी उनकी उंगलियां, उनकी पोरें देखा करें, उनके फिंगरप्रिंट्स को देखा करें, तो आपके दिल में अल्लाह का प्यार आएगा। फिर उसके बाद नफ्स को ये याद दिलाना कि मैं किससे सरगोशी कर रही हूँ। कभी आपको मुझे किसी बड़े बंदे से बात करने का मौका मिल जाए, फिर जो हमारी टोन, जी जनाब, थैंक यू, शुक्रिया, और बार बार ये कहते मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं आपसे मिल रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आप ये सारी बातें अल्लाह ताला के साथ करें। और फिर वैसे भी प्रैक्टिकली भी कुछ चीज़ें मैं दे देती होती हूँ कि नमाज़ों में खुशू क्यों नहीं, दिल क्यों नहीं लगता, आज हमारी नमाज़ें मुर्दा क्यों हैं? उसके लिए आप सबसे पहली बात है कि वक्त से पहले ज़हनी तौर पर तैयार हैं। ये जो अज़ान और नमाज के बीच में 15-20 मिनट होते हैं ना, ये जहनी तैयारी के हैं। आप देखिए, आप इवन शादी में जा रही हैं, अगर कभी बग़ैर तैयारी के चली जाएं तो मज़ा आता है? आपने घर वाले कपड़े पहने हैं, पुराने भी हैं, कुचले मुचले भी हैं, कोई ज़बरदस्ती आपको गाड़ी में बिठा कर ले गया, पूरी शादी आप परेशान होंगे, आपको ऐसे लगेगा सब मुझे देख रहे हैं, हालांकि वल्लाह ही आपको कोई नहीं देख रहा होगा। तो तैयारी से जाएं तो आप खुश होते हैं। ये जो हम किसी के आने पे तैयार होते हैं, या हम किसी के घर जाते हैं तो तैयार होते हैं, या मस्जिद में जाते हुए या किसी जगह, ये असल में हम इज्जत दे रहे होते हैं कि हम बहुत खुश हैं, थैंक यू आपने हमें इनवाइट किया, आप हमारे घर आए, हम बहुत खुश हैं, मोहब्बत का इजहार है। तो नमाज के लिए ये सब किया करें, साफ़ सुथरे, अगर मुमकिन है तो 2-3 डिब्बों के साथ शावर, साफ सुथरे, प्लेन, ऐसे सॉफ्ट कपड़े, फिर ऐसे कपड़े पहनिए जो सिरके नहीं, दुपट्टा बार बार खिसक रहे तो मसला होगा, फिर आपके सामने कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, घर का कोई ऐसा कोना अपनी नमाज के लिए चूज़ करें कि बिल्कुल सामने एक सफ़ेद दीवार हो और आप रब के सामने। कभी कभी बहुत मखमली किस्म की वेलवटी जाए नमाजें भी हमारे खुशियों में रुकावट बनती हैं, हम वो डिब्बे गिन रहे होते हैं, कलर कॉम्बिनेशन में खोए होते हैं, कितने उसमें से डिज़ाइन बनते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह के सामने खड़े होने को महसूस कीजिए। इंशाल्लाह दिन में 5 बार आपको एक ऐसी ट्रेनिंग मिलेगी, कुछ दिन के बाद आपको ऐसे लगेगा कि मैं अल्लाह के सामने खड़ी हूँ। फिर इसके बाद आगे अगर चलते हैं तो आयत 12 से 16 में इंसानी तख्लीक के मराहिल हैं। आपकी मेरी पैदाइश का जिक्र है, वलकद खलकनल इंसान मिन सुलाला। आप देखिए कि अगर कुरान में ये स्टेप्स ना होते तो मेरा गुमान है कि ना कोई साइंटिस्ट या एम्ब्रियोलॉजिस्ट तहकीक करता और ना ये सारी कैफियत बताता। हर 40 डेज़ के बाद पेट में बच्चे की कैफियत चेंज हो रही है। अल्लाह ने सुलाला सत एक्सट्रैक्ट मिन तीन मट्टी का, आप और मैं जो खाते हैं एंड पे वो एनर्जी बनता है। एक बच्चे के दुनिया में आने के असबाब के बीच में जो चीज़ है, चाहे वो माँ से है या बाप से है, वो मट्टी से निकली हुई चीज़ें खाकर बनती हैं। कतरा कतरा अल्लाह जमा करके उसको माँ के पेट के अंदर, एक रहम के अंदर, एक नुतफे की सूरत में बकरता है, करारे मकीन यूट्रस। आप देखिए कैसे औरत चलती है, फिरती है, उठती है, बैठती है, अल्लाह बच्चे की हिफाजत करता है। फिर इसके बाद अगले मराहिल भी हैं, इस पर भी गौर कीजिए। आज तक डॉक्टर्स पूरी कैफियत नहीं बता सके कि पानी हड्डी में कैसे बदलता है। पानी बालों में कैसे बदलता है, ये खूबसूरत चमकती हुई छोटी-छोटी आंखों में कैसे बदल जाता है, ये नाखनों में पानी कैसे बदलता है। तो अल्लाह से दुआ है कि हम भी अपने ऊपर गौर व फिक्र करने वाले बने। और यहाँ एक काम लिखिए, जिनके घरों में बेबीज हैं, आज उस बच्चे को इस नज़र से देखिएगा कि वो मेरे रब का मास्टरपीस है। उसके बाद आगे आयत 17 से 22 में अल्लाह ताला की शान रज़ाकियत का तذکرہ है। पहले इंसान की तख्लीक और अब यह कि मैं तुम्हें खिला क्या रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर 7 आसमान 7 रास्ते हैं, फिर हम तुमसे गाफिल तो नहीं है, फिर हमने आसमान पैदा किया उतना जितनी तुम्हें ज़रूरत है, और अगर चाहें तो ले जाए, बारिश नहीं होती तो नहीं होती। आज लोगों ने मस्नूई बारिश बना ली, लेकिन होती बारिश को कोई नहीं रोक सका, आते तूफानों को सैलाबों को कोई नहीं रोक सका, सुनामी को कोई ना रोक सका, ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। फिर आप देखिए कि खजूर और अंगूर के बाग मेवे भी हैं, तुम भी खाते हो, और साथ ही फिर एक दरख्त जिसको तूरे सीना यानी शजरतन के लफ्ज़ के साथ एक दरख्त का तस्करा कि जो निकलता है मिन तूरी सीना, और वो कौन सा है कि जिसमें से तेल भी निकलता है, सालन भी है खाने वालों के लिए, मुराद है जैतून। हमारे कल्चर में इतना आम नहीं है, लेकिन बहरहाल ये बहुत था उस इलाके में जहाँ की बातें हो रही हैं। और फिर एक और अजीब सी चीज़, वह इन्ना लकुम फिला ना मिला इबरा, और ज़रा जानवरों को तो देखो, कैटल्स चौपाए मवेशी गाय भैंस बकरी ऊंट, इन सब को देखो, इनकी फीमेल्स तुम्हें क्या देते हैं, नुस्खी को मिम्मा फी बतूनिहा, हम पिलाते हैं तुमको जो उनके पेटों में। यहाँ सीधे से कहा जा सकता था ना, दूध हम पिलाते से क्या मुराद है कि आज के बाद जब भी दूध इस्तेमाल करें अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, अल्लाह आप ये दूध पिलवा रहे हैं। अब देखिए, पैदा होते ही बच्चे को जो जिस तरीके से दूध मिल रहा है किसी इंसान के बस में है? बच्चे को दूध पीना कौन सिखाता है? और उससे लेकर आज तक डेयरी आइटम सारे जहन में रख कर इस आयत पे गौर कीजिए, और क्या तुम्हारे लिए और भी बहुत फ़ायदे हैं, और उसमें से तुम खाते हो, और साथ ही कश्तियाँ जिन पे तुम सवार किए जाते हो, क्या ये बातें काफ़ी नहीं है तुम्हें अपने रब की शान को समझने के लिए? तो कहिए कि अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन।